پیش پیش به نه. संतप्त मानस शांत हूं जिनके गुणों के गान में आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति की चर्चा करनी है ना नीचे आचार्य यद्यपि आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में उक्त गाथाओं के भाव को इसी प्रकार स्पष्ट करते हैं तथापि वे शंका उपस्थित कर एक बात का विशेष स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं जो इस प्रकार है शंका हे भगवान इसके पहले बंदाधिकार में कहा है कि एवं राणी शुद्धो न स्वयं परणमदिरागमादि लायज्जदि अन्येहदु जो रत्तदि यही बाभेहि एवं राणी यह ज्ञानी रागादि रूप स्वयं परिणमित नहीं होता। अब यहां ये कह रहे बार बार कि स्वयं परिणमित होता है और कोई परद्रव्य उसे परिणमित नहीं कराता है। और पिछले बंधाधिकार में एक कहा है मूल गाथा में इसलिए यहां पर गाथा भी दी है कि यह आत्मा स्वयं रागादि रूप परिणमित नहीं होता। एकदम परस्पर विरुद्ध कमेंट्स है ना। रायज्जद अन्य ही दूसरों के द्वारा रागी द्वेषी किया जाता है। सुरत्तादि ये भाव जिस प्रकार ज्ञानी शुद्ध है वह रागादि भावों से स्वयं प्रणमन नहीं करता है लेकिन वह अन्य रागादि भावों से दोषों से रागादि विकार भावमय किया जाता है। इसलिए ज्ञानी आत्मा रागादिकों का अकर्ता है और रागादि परद्रव्य से उत्पन्न होते हैं ऐसा कहा गया है। उस गाथा में ऐसा कहा है लेकिन यहां स्वकीय बुद्धि दोष से उत्पन्न होने वाले रागादि भाव अपने बुद्धि के दोष से ही रागादि भाव उत्पन्न होते हैं ऐसा कहा है। परकीय शब्दादि पंचेन्द्रियों के विषयों का कोई दोष नहीं है और यहां पांच इंद्रिय के विषयों का कोई दोष नहीं है। पूरी गाथाएं कहीं ना कि एक रस तेरे को नहीं कहता है तू हमें चख, रूप तेरे को नहीं कहता कि तू हमें देख, ऐसा है ना। अब ये समाधान वहां बंदाधिकार के व्याख्यान में ज्ञानी जीव की मुख्यता है और सम्यक ज्ञानी को रागादि भावों के से प्रणमन नहीं कर सम्यक ज्ञानी तो रागादि भावों से प्रणमन नहीं करता इसलिए रागादि भाव परद्रव्य जनित हैं ऐसा कहा है वहां पर बंधाधिकार में। और यहां अज्ञानी जीव की मुख्यता है वह अज्ञानी जीव अपने बुद्धि दोष से परद्रव्य को निमित्त मात्र आश्रय करके रागादि भाव रूप से प्रणमन करता है। इस कारण वे परकीय इस कारण से परकीय शब्दादि पंचेन्द्रीय विषयों का दोष नहीं है ऐसा कहा गया है इसलिए इसमें कोई पूर्वापर विरोध नहीं है। क्या रहा अध्यात्म शास्त्रों में श्रोताओं को जिस प्रकार का वो होगा ना दोष तो उस प्रकार से वहां वर्णन करते हैं। टूर्नामेंट जी ने मुख्य महाप्रकाशक में दिया ना कि जहां व्यवहार की अधिकता हो वहां व्यवहार के निषेध रूप वर्णन करते हैं और जहां पर ऐसा हो कि निश्चय की मुख्यता हो गई हो और व्यवहार की उपेक्षा हो रही हो तो वहां पर इस बात का जोर देते हैं कि नहीं व्यवहार का पालन करना बहुत जरूरी है। तो अभी एक प्रश्न फिर खड़ा हो जाता है कि ये तो बात ऐसी हुई ना कि अपने मौका देखा जैसा जैसी कह दी माने वस्तु के स्वरूप के आधार पर तो बात हुई नहीं ना ऐसा लगता है ना अपन को। ये तो आप ऐसे ही बात कह रहे हो कि जब जैसा मौका लगा वैसी बात कह दी तो कहते देखो वस्तु में ही ऐसा दोपना पड़ा है और इसलिए अपने नयों की विवक्षा है। अब वो नए कब कहां कैसे लगाना, ये तो भक्तों इच्छा विवक्षा, विवक्षा का अर्थ ही होता है भक्तों इच्छा, बोलने वाले की इच्छा का नाम विवक्षा है। वो जिस बात को समझाना चाहता है उस बात की बात करेगा। तो ये वस्तु के स्वरूप में ये व्यवस्था है। देखो ये भगवान आत्मा अनादि अनंत नित्य भी है, अनादिकाल का है और अनंत काल तक रहने वाला है, इसमें कोई शंका की गुंजाइश है? और ये प्रति समय बदल रहा है, इसमें भी किसी को शंका की गुंजाइश है? इसकी पर्याय प्रति समय बदल रही है, पर्याय दृष्टि से ये और द्रव्य दृष्टि से अनादि है, ये दोनों ही बातें परम सत्य है ना। अब होता क्या है, क्या जो त्रिकाली ध्रुव को भूलकर और मात्र इस पर्याय पर ही अपना लक्ष्य बनाकर एक समय मात्र मानते हैं क्षणभंगुर, और उसमें से वो ऐसा भी निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, है ना, खूब जाओ कर्जा लेकर के घी पियो, है ना, यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यानी हमको उसका बदला तो देना ही नहीं पड़ेगा, प्रकाय का डर है, एक कर्जा लेके चुकाना पड़ेगा तो बहुत सोचते हैं ना कर्जा लेने के बारे में, और कितना ब्याज मांगता है क्या करता है, तो एक एक परसेंट पर झगड़ते हैं कि नहीं हम इतना तो नहीं लेंगे, इतना देना पड़ेगा, ये सब होता है कभी? लेकिन ये सब बातें किन की हैं, जिन्हें पैसा वापस करने का भाव हो, जो जिनको ये है कि एक दफे हाथ में तो आ गए, फिर हमको ना मूल ना ब्याज देना ही नहीं है। वे तो कहते साहब 300 रूपया सैकड़ा ब्याज लगाएगा, नहीं 4 लेना ना, एक दो तो पहले तुम्हारे हाथ में से निकल के हमारे हाथ में तो आ गए। तो दो तरह के लोग होते हैं ना। देखो अनित्य है, ये बिल्कुल सही बात है, प्रति समय बदल जाएगा ये सही बात है, लेकिन उसका ऐसा अर्थ निकाल करके और ऐसा असदाचारी जीवन अपनाए तो वो सही नहीं है ना। तो उसको वो जो नित्य पक्ष है वो बताना पड़ेगा कि भैया अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, और उनको ये समझाना पड़ता है कि देख तूने इस भव में कर्जा नहीं लौटाया तो अगले भव में बैल बन के देना पड़ेगा। किसान क्या करते हैं ना कि बैलों से खेत जोतते हैं, और फिर बेटा बैल कमजोर कभी ना कभी कमजोर पड़ते ही है ना, बुढ़े होते हैं बीमार होते हैं, तब वो खेत में बैठ जाते हैं चल नहीं पाते हैं, तो उन्हें मार मार करके खड़ा करते हैं, क्योंकि उस वक्त दूसरा बैल कहां से लाए, तो खेती कैसे करना, खेती तो करनी है ना, अब तो उसके पैसा जुटाने पड़ेंगे खरीदना पड़ेगा। माने अपन को जैसा लगता है बड़ा दुष्ट है ये, लेकिन उसकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो क्या करे। अपने जंगल में एक आदमी मजदूर ले गया था सामान और उसने जंगल में छोड़ दिया, अब अपन चाहते तेरा पैसा, एक पैसा नहीं दूंगा मैं, ऐसा नहीं करूंगा, धमका रहे होते उन्हें उठा के ले चल, तो उसकी उस पर तो दया आती है कि भाई वो उसकी तबीयत खराब होगी बेचारा थक गया है, लेकिन हम भी तो संकट में खड़े हैं जंगल में, अब हम क्या करें, दूसरा मजदूर मिलता हो तो उसे भी दे दें और दूसरे को भी दे दें और ले जाएं। तो वो बैलों के प्रति अत्यंत दयालु भी होता है और अत्यंत निर्दय व्यवहार भी करता है किसान। तो उस किसान को ये धमकाते हैं कि तूने यदि अभी कर्जा नहीं चुकाया तो तुझे सेठ जी का बैल बनना पड़ेगा और फिर बैल बनके चुकाना पड़ेगा। माने दोनों का उद्देश्य सदाचार लाना है, बात भी सच्ची है, अगले भव में भी उस सेठ जी को पैसा चुकाना पड़े चाहे ना चुकाना पड़े, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं उसका फल तो हमको अगले भव में भी मिलने वाला है ना। यानी हम मरने पर ही तो हम समाप्त नहीं हो जाएंगे, तो इसलिए नित्य पक्ष और अनित्य पक्ष दोनों का आवश्यकता के अनुसार विवेचन करना पड़ता है। ऐसे ही अज्ञानी जी, भाई मेरे को क्या है, ये तो कर्म के उदय में, कह कर्म ने ही सब कुछ किया। कहता कर्म पर टालता है और अपने माथे में कोई जिम्मेवारी नहीं रखना चाहता निश्चयभाषी जैसा, तो उसे बता रहा है कि नहीं नहीं तेरा ही अपराध है, तेरा ही अपराध है। क्यों? क्योंकि ये भूमिका काय की बन रही है। अभी अपन प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान उसमें जा रहे हैं ना, तो गाथाओं का तुम पाठ करते हो ना, अभी तो आती है बहुत अच्छी गाथाएं हैं, कलश तो बहुत ही बढ़िया है और उनका पद्यानुवाद बहुत ही मार्मिक है, जो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना का। तो हमको प्रतिक्रमण अपनी गलतियों को स्वीकार करके और भविष्य में गलती नहीं करें इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना है ना, तो ये तीनों चीजें मिलाकर के ये बात हो जाती है। प्रतिक्रमण माने आज तक की जो गलतियां हुई हैं उनकी सच्चे हृदय से स्वीकृति, और भविष्य में नहीं करेंगे इसका संकल्प, और वर्तमान में हो रही हैं उनके भी खेद व्यक्त करके उन्हें छोड़ना। तो इस तरह तीनों मिलकर के हमें गलतियों को सुधारने की बात पर हमें ले जाना है। तो पहले तो ये बताना पड़ेगा गलती तूने ही की है, तेरी ही गलती है, इसमें कर्म वर्म का कुछ लेना देना नहीं है। तो कर्म के उदय की जो निमित्तता है उससे इंकार नहीं है, ख्याल में है ना। और यहां दूसरी जगह जब ये अपने को अपराधी मान के बैठ जाता है, अब हम तो क्या करें, हम तो ऐसे ही हैं ऐसे ही हैं, ऐसी बात नहीं है, तुम अपराधी नहीं है, तेरे ऐसे कुल का है, ऐसा है वैसा है, उसको फिर खड़ा करते हैं। यदि वो बिल्कुल ही ठंडा पड़ जाता है तो उसको वो बात करते हैं, और वो भी कोई झूठी नहीं है, वो बात जो कही बताई जाती है उन लौकिक व्यवहार में भी वो भी सत्य ही होती है। हर आदमी में कुछ क्वालिटीज भी होती हैं और कुछ डिसक्वालिटी भी होती हैं, ख्याल में आई ना। तो मौके मौके पर डिसक्वालिटी याद करानी पड़ती है और मौके मौके पर क्वालिटी याद करानी पड़ती है। तो ये नहीं है कि मुंह देखी बात कर रहे हैं, बल्कि वस्तु के स्वरूप में ऐसी बात है और उसके प्रतिपादन की शैली में भी ऐसी बात है, और आगम की आज्ञा से वो बात है। उनको नहीं समझते थे कि मैं यहां पीछे अभी हाल बंदाधिकार में ये बात कह के आया हूं और अभी यहां ये कह रहा हूं, लेकिन उन्हें कोई अटपटा लगता ही नहीं ना, क्योंकि उनको पूरा वस्तु का स्वरूप हाथ पर रखा ख्याल में है कि वो भी बात गलत नहीं थी, इसलिए बहुत शांति से जवाब दे देते हैं। यहां वहां ये प्रकरण था, गुरुदेव ने कह दिया ना, भाई गुरुदेव कहें मुझे माथे पे काय के सल पड़े, कोई मैंने थोड़ी कही है वहां ये कहा था और यहां ये कहा, ये तो खुद आचार्य की गाथा वहां है और उन्हीं आचार्य की गाथा यहां है, तो मुझे तो सिर्फ बताना है अपेक्षा है? मैं इसमें गिल्टी फीलिंग किस बात की करूं। जैसे कोई आदमी हमसे भरी सभा में पूछता है, कोई कि जैन धर्म में ऐसा भी कहते ऐसा भी कहते, तो उसने तो जैन धर्म पे आरोप लगाया ना, हम पे तो नहीं लगाया ना। अब हमारी तो बात यह है कि जैन धर्म में जो सच्ची बात है हम बताएं, हमें क्या छिपा के करना है, जो अपेक्षाएं हैं हम वो बता दें। तो रमन जी ने बार बार यही किया है मुख्य महा प्रकाशक में, वहां पर ये अपेक्षा थी, यहां ये अपेक्षा थी, वहां ये अपेक्षा थी, यहां ये अपेक्षा है। तो कहते हैं भाई वस्तु स्वरूप तो सापेक्ष ही है, और उसको किसी अपेक्षा को स्पष्ट किए बिना स्पष्ट नहीं किया जा सकता, और यही जवाब है। हमें अपना अपनी तरफ से माथे पर जिम्मेवारी लेकर और उस बोझे से दबकर कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग जब ऐसी बात करते हैं, जैसे बना जैन धर्म का भूगोल है, अब वो अपने आज के विज्ञान से सेट नहीं होता है, और समझ लीजिए कि हमारे पास इतना साधन नहीं है, हमारे पास उतना उपलब्ध भी नहीं है ज्ञान, और जितना साधन उनके पास है और जितना उन्होंने अपने प्रयोग कर करके देखा है कि जिससे हम उनके सामने टक्कर में खड़े हो सकें, तो हमसे वो पूछता है भरी सभा में, कैसा भी ऐसी बात क्या है, सूरज तो घूमता है चंद्रमा, तो हमको काहे को घबराने की जरूरत है, क्या झूठी बात सिद्ध हो जाएगी ना जैन धर्म की? तो हम तो वो जैनी नहीं है, जो पूछ रहा है वो जैनी नहीं है क्या? यदि वो जैनी है तो जितनी जिम्मेवारी हमारी है उतनी ही उसकी भी है। हम तो उसे ये कहें कि भैया बात तो ऐसी है, बोलो अब क्या करें, तुम बताओ ना, हमारे साथ तुम्हारी भी जिम्मेवारी है ना। और यदि वो विधर्मी है ऐसा कहने वाला, तो विधर्मी को हम विधर्मी जैसे निपटेंगे, क्योंकि उनके भी धर्म में ऐसी बहुत बातें हैं जो हमारे से ज्यादा कंट्रोवर्शियल दिखाई देती हैं, जो असंभव जैसी लगती हैं, है ना। जैसे धर्म परीक्षा की जो पद्धति अपनाई ना, कि तुम्हारे यहां भी तो ऐसा है, तो उस सामने वाले को यदि वो विधर्मी है तो उसके लिए अलग जवाब है, यदि वो साधर्मी है तो उसके लिए अलग जवाब होगा। यानी हमको कोई ये तो ऐसा लाया है, हम तो साहब निरुत्तर हो गए, हमें तो हमारा तो गर्दन नीची हो गई। काहे को होगी तुम्हारी गर्दन नीची, तुमने क्या किया? जब मैं पहले यहां स्मारक में आया था ना, तो हर आदमी आता था, ये हॉल है ऐसे, हमारी शादी को दे दो, इसको ये दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो। अपन ने ट्रस्ट में नक्की कर लिया था कि नहीं देना, नहीं करना। अब ऑफिस में तो अब तीन जने थे, एक मैं था, एक कपूरचंद जी बाबू जी थे, और एक उन्हें भी थे, अपने जो प्यून है वो था, कोई चौथा तो आदमी था नहीं। गोदगाजी तो विदेश में रहते थे, कभी कभी पादनी जी यहां आगे रहते थे, जैसे भी अंत में रहते थे ना निरंतर, ऐसे नहीं रहते थे, आते थे बहुत संभालते थे लेकिन निरंतर नहीं रहते थे, इसलिए अपन को ही समझाना पड़ता था। तो वो बाबू जी बोलते थे मेरे से, कहते हमें लोग बहुत परेशान करते हैं, हमें परेशान करते हैं। तुम काहे को परेशान होते हो? कैसा वो बहुत आग्रह करते हैं कि हमें दे दो, फिर ये कहते उसको क्यों दिया था, उसको क्यों दे दिया था, तुम्हारा तो ये हुआ था, बुद्ध के की लड़की की शादी तो यहीं से हुई थी, आपकी लड़की की भी शादी यहां हुई, पंडित जी की भी, हमें क्यों नहीं दोगे, सब तरह की बातें करते हैं। मैं तुम काहे को परेशान होते, तुम्हारी लड़की की तो नहीं हुई, तुम्हारी तो कोई नहीं कह रहा है ना, तुम शांत भाव से कह दो ना, कभी नक्की किया है कि नहीं देना, बस खत्म। वो 100 दफे कह दो, 101 दफे तुम कह दो, वो कैसा, वो बुद्ध गई का क्या हुआ था, अब उनकी है ये तो उनसे पूछो, उनसे हम क्या करें, उनने बनाया है हॉल पूरा है? तो उनकी क्या बात करते हो कि पंडित जी 24 घंटा यहां इसी में लग रहे हैं, सारी जिंदगी लगा दी है, तो वे कहां करने जाएंगे? भाई उनका तो घर है, उनका तो यहां होगा, और आपको नहीं मिलेगा ये हमारे तय है, और अभी आपको बाकी जो जाना हमारे पास भेज दो, जिसके पास भेजना हो भेज दो। अब फिर आप क्या करोगे? हम भी इसी प्रेम से निपटाएंगे, क्या कहना, हम भी हम जो जवाब बता रहे तुम्हें वो कोई गलत थोड़ी है, वो सही है ना। हमने पिछले 40 वर्ष से न संडे देखा, न सैटरडे देखा, न दिन देखा, न रात देखा, समझे ना। और इसके लिए हमने समर्पित कर दिया, तो ये भी हमारे लिए पूरी तरह समर्पित है, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। हम आपसे कहते हैं कि आपका जो बंगला है उसमें तो आपने अपने शादी करी बेटे की, तो हमारे बेटे की शादी करे, तुम अपना बंगला खाली करके दो हमें, क्यों? तुमने अपने की करी थी ना, क्यों? तो सीधा सीधा न्याय है कि तुम अपने करो, तुम अपने में करो, हमने अपनी करी थी ना अपने बंगले में। तो ऐसा है, मैंने माथे में बोझा रखने की जरूरत ही क्या है, हम बिल्कुल नॉर्मल सहज रह सकते हैं, जो है वो वस्तु का स्वरूप है, और जो हम जवाब दे रहे हैं वो वस्तु के स्वरूप के विरुद्ध जवाब नहीं है। देखो जवाब दिया, द्वारा पढ़ू क्या? अभी 4 लाइनें मैंने छोड़ी थी, तो भी पढ़ देता हूं। देखो, इस प्रकार निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग भूत, निश्चय कारण समयसार और व्यवहार कारण समयसार, इन दोनों को न जानने वाला होकर अज्ञानी जीव स्वकीय बुद्धि दोष से रागादिभाव रूप से प्रणमन करता है, इसमें परकीय शब्दादिकों का कोई दोष नहीं है। के निष्कर्ष से इन गाथाओं का, ये 10 गाथाएं जो अपन ने पढ़ी थी ना, किसी पर का दोष नहीं है, तेरा ही दोष है, समझ ना, इसलिए तेरे से कहते हैं। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि जब ज्ञेय पदार्थ स्वयं को जानने के लिए आत्मा को बाध्य नहीं करते, ये है निष्कर्ष। फिर रूप कहता है तू हमें देख मत, रस कहता है तू हमें चख, तो निष्कर्ष क्या है कि ज्ञेय पदार्थ ज्ञान को बाध्य नहीं करते, ज्ञेय पदार्थ स्वयं को जानने के लिए आत्मा को बाध्य नहीं करते, और आत्मा भी उन्हें जानने के लिए उनके पास नहीं जाता। सहज भाव से ही ज्ञेय पदार्थ जानने में आ जाते हैं, आते रहते हैं। ये स्थिति ये है, अभिमान ऐसी स्थिति होने पर भी न जाने क्यों कुछ अज्ञानी जन उन्हें जानने के लिए आकुलित होते रहते हैं। देखो, कुछ अज्ञानी जन उन्हें जानने के लिए आकुलित होते रहते हैं, और कुछ लोग गेहों को जान लेने मात्र से अपराध बोध से ग्रस्त हो जाते हैं। क्या समझे, दो बात समझ में आई, एक तो उन्हें आकुलता करते हैं जानने के लिए, और एक पर जानने में आ गया ये अपराध हो गया। अब आप कहो ऐसा तो नहीं है कोई, अपने यहां बहुत है मोक्षों में, लेकिन उन्हें छोड़ दो, मैं तो आपकी और मेरी बात करता हूं कि हम सामायिक करने बैठे है ना, तो उस वक्त कोई सामने वाला हमें देखने में आ जाता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है ना। हम तो आत्मा को जानने के लिए बैठे थे, हम तो अपने इस मन में लगाने में बैठे थे, आप यहां प्रवचन सुनने के लिए शांति से बैठे, बिल्कुल ईमानदारी से उपयोग को लगा के बैठे हैं, और फिर भी वहां से आवाज आ जाती है, आ जाती है ना, आपके कान में पड़ जाती है, तो अब आपने क्या गलती की, क्या अपराध हुआ, आपने आपसे क्या गलती हुई। तो ऐसे कहते हैं कि ज्ञान का ज्ञेय पर पदार्थ बन गए तो भी तुम्हें आकुलता करने की क्या जरूरत है, और नहीं बने क्यों, अपन प्रवचन सुन रहे हैं और सामने की सड़क से बारात निकल गई, कोई ने अपन से पूछी कि यहां से बारात निकली अभी, हमें तो पता नहीं है, है? क्या? तो उसमें तुम्हें काय का शर्म आ रही है, साहब सामने इतनी बड़ी बारात निकल गई बाजी बाजी के साथ में, और ये कैसा मुंह रखे, इतना ही पता नहीं चला, इतना ही उसमें काय के मुंह रखता। हम सयोक्षम ज्ञान वाले जीव हैं तो हमारे ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है, कहते कभी जो पर गे जानने में आने आते हो आ जाते हैं, नहीं आते हैं नहीं आते, केवल ज्ञानी को नहीं ये सुविधा, अपन कहते केवल ज्ञानी को बहुत बढ़िया है, सब जानने में आता है, कभी ऐसा कोई उड़ाना नहीं मिलेगा, चाहे तुम इसे क्वालिटी कह लो चाहे डिसक्वालिटी कह लो, कि ये सुविधा नहीं है कि मुझे नहीं जानना है। अभी आप समय के टाइम पर आपको चाहिए ना ये सुविधा, और कोई चीजें मेरे ध्यान में नहीं आए, लोग हमारे पास शिकायत लेके आते हैं कि जब आत्मा का ध्यान करने बैठते हैं तो सबसे ज्यादा दुनिया दिखाई देती है, आत्मा तो दिखाई नहीं देता और सारे भाई पदार्थ दिखाई देते हैं। तो क्या उपाय है धन कुमार जी बोलो, आप यदि हम ये बताएं कि दिखाई देखे दिखने दो ना, तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ता है, इसके से आज पंडित है क्यों, फिर सारा ये तेरे ज्ञान में झलक गया तो अभी इतना घबरा रहा है थोड़े से में, जब तू केवल ज्ञानी हो जाएगा तो प्रति समय सारा आनंद ये झलकेंगे तब तेरी क्या हालत होगी, तुझे तो वहां पहुंचना है ना कि सारे अनंत गए झलकेंगे, तो अभी थोड़े बहुत तेरे ज्ञान के गए बन गए तो बन जाने क्या है। तो लेकिन कुछ लोग पर हमारे ज्ञान के गए क्यों बन गए, वे कुछ लोग कौन है, अपने में देखो ना कि जब कभी हम सामायिक के नाम पर बैठते हैं, किसी किसी काम के नाम पर बैठते हैं, परीक्षा देने बैठते हैं, पढ़ने के लिए बैठते हैं, और चाहते हैं कि हमारा पूरा मन इधर लगे, यहां वहां मन नहीं जाए, चाहते ना, और फिर भी और पदार्थ हमारे ज्ञान के गेय बनते हैं, तब हम भी आकुलित होते हैं कि नहीं होते, फिर भी ज्ञान के गेय बन गए तो क्या गजब हो गया। वो मैंने वो उदाहरण दिया था, याद है कि नहीं, कि वो एक बुढ़ी अम्मा चिल्ला रही थी ना कि जमाई राजा बेटी को ले गया, जमाई राजा बेटी को ले गया। क्यों कहते हैं नहीं पता, कि जंगल में एक बुढ़ी अम्मा जा रही थी, साथ में एक बच्ची थी उसकी, एक पोटरी थी, एक घुड़सवार आया पीछे से, दो अच्छा चलते चलते, तो भैया जरा रुको, कहाँ जा रहे फला गांव, हमें भी वहीं जाना है, ये लड़की बहुत थक गई है, भाई मैं भी बहुत थक गई हूँ ये सामान की, इस लड़की को बैठा लो तुम घोड़े पर, पोटरी रख लो और बस गांव में हमें छोड़ देना, 2 किलोमीटर गांव है बस। पहले तो उसने कहा झंझट में पड़ू, चला गया। आगे उसने उससे कहा कि यार अपन ने कितनी बेवकूफी की, ये तो दहेज सहज लड़की मिल रही थी, ये बुढ़ी अम्मा अपना कहां पीछा करती, लौट के आया, वो बैठाने को तैयार हो गया। तो इससे पूछा तेरा नाम क्या है, क्या मेरा नाम जमाई राजा, बेचारी क्या जाना जमाई राजा नाम होगा, देख लिया। अब वो भागा तो चिल्लाई कि जमाई राजा बेटी को ले गया, जमाई राजा बेटी को ले गया। तो लोग कहेंगे उसमें क्या गजब हो गया, कह रहा हूं असामायिक के टाइम में इतने पदार्थ जानने में आ गए, अरे क्या गजब क्या हो गया वो तो स्वभाव परिणमन है, भगवान आत्मा का स्वभाव सारे लोकालोक को जानने का है, वो अपराध रूप परिणमन नहीं है। तू जबरदस्ती अपराध बोध लिखा, सुने अपराध बोध लिखा था ना, दो तरह से एक अपराध बोध से ग्रसित हो जाते हैं कि मेरे पर जानने में क्यों आ गए, और नहीं आए तो भी ग्रसित हो जाते हैं जानने वाले। देखो इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि जब गे पदार्थ स्वयं को जानने के लिए आत्मा को बाध्य नहीं करते और आत्मा भी उन्हें जानने के लिए उनके पास नहीं जाता, सहज भाव से ही गे पदार्थ जानने में आ जाते हैं, आते रहते हैं, ऐसी स्थिति होने पर भी न जाने क्यों कुछ अज्ञानी जन उन्हें जानने के लिए आकुलित रहते हैं और कुछ गेयों को जान लेने मात्र से अपराध बोध से ग्रस्त हो। कुछ अज्ञानी जन, ये दोनों ही जगह लगा ना अज्ञानी जन, बड़े 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 ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि परगेयों को जानने और नहीं जानने इन दोनों स्थितियों के प्रति सहज भाव धारण करना ही मार्ग है। सहज भाव धारण करना ही मार्ग है बस। अब आत्मख्याति में आकार अमृतन इसी भाव का पोषक कलश काव्य लिखते हैं जो इस प्रकार है, पढ़ो भाई।
पूर्णई का च्युत शुद्ध बोध महिमा बोधो न बोध्यादयम् यायत् काम विवेकियाम् ततीतो दीपा प्रकाश्यादिव तदस्तु बोध बंद दिशणा एते किम ज्ञानिनो राग द्वेषमयी भवन्ति सहजा मुच्यन्तु दासीनता। जैसे दीपक दीप वस्तुओं से अप्रभावित वैसे ही ज्ञायक गेयों से वृक्त न हो फिर भी अज्ञानी जन क्यों असहज होते हैं ना जाने क्यों व्याकुल हो विचलित होते हैं।
दीपक है यानी इस हॉल में रखा है और जितनी चीजें हैं उनको प्रकाशित कर रहा है, अब हमने और चीजें लाके वहां रख दी तो नहीं नहीं अब नहीं, अब मेरे से नहीं किया, मैंने इतना कर दिया मेरे से नहीं होगा, वो दीपक कभी मना करता है क्यों, कम चीजें हैं तो कम चीजों को प्रकाशित कर देता है, ज्यादा चीजें हैं तो ज्यादा चीजों को प्रकाशित कर देगा। जैसे ये लट्टू जितने जल रहे मान लो तो एक ही जल रहा होता तो और आप इतने लोग आ गए और इतने ही लोग और आ जाते, नहीं 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 मेरे को नहीं, अब बहुत हो गया, मैं ज्यादा को नहीं प्रकाशित कर सकता, जैसे दीपक को कोई आकुलता नहीं होती है तो तेरा स्वभाव तो दीपक जैसा है। कभी दादा ये जान लिए, मुझे ज्यादा नहीं जानना है। अभी तू क्यों, तेरे को जानने की बाध्यता हो तो तू ये कह सकता है। लेकिन तेरे सहज भाग से तेरे जो ज्ञान में आ जाए तो आ जाए, आने से तेरे क्या तकलीफ है ना। देखो जैसे दीपक दीप वस्तुओं से अप्रभावित, दीप माने जो दीपक में प्रकाशित होती हैं उन्हें बोलते दीप, दीपक से दीप दीपक संबंध है उन पदार्थों का। तो जैसे दीपक जो दीप वस्तुओं से बिल्कुल अप्रभावित रहता है, ऐसे ही गायक गेयों से विकृत नहीं होता। कम गेय हैं, ज्यादा गेय हैं, अच्छे गेय हैं, बुरे गेय हैं, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर भी अज्ञानी जन क्यों असहज होते हैं, फिर भी अज्ञानी लोग असहज रहते हैं। नहीं नहीं अब ज्यादा हो गया, अब नहीं, नहीं इतना तो मुझे चाहिए चाहिए, कम से कम इतना तो मुझे जानूंगा ही, इतना नहीं जानूंगा, एकदम असहज होते हैं। ना जाने क्यों व्याकुल हो विचलित होते हैं। ऊपर लिखा ना देखो, सहज उदासीनताम मुंचती, सहज उदासीन होना चाहिए ना गेयों के प्रति, तो हम उस सहज उदासीनता को छोड़ देते हैं। अब बिल्कुल जो ज्ञान रंच मात्र भी बोझे का कारण नहीं था, उसी ज्ञान के माध्यम से हमने इतने बोझा अपने माथे पर ले लिया और हम चिंतित रहते भाई। जब यूनिवर्सिटी में जाओ ना तो 100-100 विषयों में एमए, 100-100 विषयों में एमएससी, हाय राम कौन पढ़ेगा इतने क्यों, और इससे घबराए कोई। अरे तेरे को क्या लेना देना, चाहे 100 विषय हो चाहे वहां 1000 विषय हो, तू तो एक समय में एक विषय पढ़ेगा और एक क्लास में जाना है, बस तेरा तो उतनी सी जिम्मेवारी है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतने सब्जेक्ट हैं, तो को धने और को बने जैसी इस बात को क्यों करता है। तो गुजराती भाई थे पंडित विद्वान, मतलब स्वाध्यायी विद्वान, नेमीचंद काका उनका नाम था। तो एक उदाहरण दिया करते थे कि एक आदमी था वो रुई धुनने का काम करता था, तो वो बंबई गया, वो तो सच्ची घटना कहते थे, सच्ची घटना सुनाई। तो वहां रुई के ढेर लगे पहाड़ जैसे बने, जहां भी जब कपास की मंडी होती है और जहां बिकने आता है तो वहां से तैयार हो करके तैयार रखी जाती हैं। तो ये क्या है कि रुई है, रुई है, और वो रोजिना उसको धुनने का काम करता था, तो 2-3 किलो रुई को मुश्किल से धो पाता था, धुन पाता था। इतने में तो उसको बहुत दर्द यहां होने लगता है, ऐसे धुनते थे ना, इसे बहुत दर्द होने लगता था। इतनी रुई मुझे पागल हो गया देख के, को धुने और को बने, वो समझ ले इतनी रुई को धुनना पड़ेगी, फिर बाद में उसका सूत काट के बनाना पड़ेगा, फिर उसको कपड़ा में बुनना पड़ेगा। वो सारा काम कोरी था ना, कोरी तो सब काम करता था। तो कौन धुने और कौन बुने, ऐसा यही मतलब पागल हो गया। अब बहुत दिन आ गया, अभी समझ में नहीं आया। फिर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास गए तो उसने सारी बात समझ करके, और उसने कहा ठीक है कल इनका इलाज हो जाएगा, चल ले जाओ घर पर। तो सुबह उसने वो अखबार वाले को कहा कि इसके मकान के सामने तुम जाके चिल्ला चिल्ला के बोलना। वो तो गुजराती में ऐसा बोलते थे कि बम्बई में रुई बाजार में लागे ली आग के बम्बई के रुई बाजार में आग लग गई और सारी जितनी रुई की गांठें थी वो सब जल के खाक हो गई। वो ऐसा चिल्ला चिल्ला करके बोलता था, ऐसा एक नकली अखबार भी छपा लिया होगा, जो भी किया होगा। तो उसने सुना कि क्या हुआ कि वो आग सब रुई जल गई, एकदम ठीक हो गया। क्यों, अब कहीं अब नहीं बुनना पड़ेगी, धनना पड़ेगी, अब बुनना नहीं पड़ेगी, अब धनना नहीं पड़ेगी, समझ में आए ना। तो ऐसे सारा अपने माथे पे बोझा क्यों ले रखा है तुमने, तो देखो सबको जानना अनिवार्य नहीं है, इसलिए जानने का बोझा माथे पे क्यों रखता है, और जानने में आ जाए तो वो भी कोई अपराध नहीं है। देखो कोई माँ बहन है, अब वो तुम उसको वो नहा रही हो और तुम उसे देखने की कोशिश करो तो तुम्हारा अपराध है। अभी मान लो कि वो यहां शायद भागे जा रही है और एकदम उसकी गांठ गांठ खुल गई और कपड़ा उतर गए दो मिनट में और तुम्हें देखने में आ गई, तो तुमसे कौन कहता है कि तुमने उसे क्यों देखा, क्या किया? कोई तुम्हें अपराधी मानता है? नहीं मानता ना। जब वो जल्दी अपने कपड़े पहन के चली जाती, सब नॉर्मल रहता है, सारा सब दुनिया नॉर्मल चलती कि नहीं चलती है। तो ऐसे कोई गेट ये जानने में आ गए उससे तुम अपराधी हो गया, ये अपराध बोध भी अच्छा नहीं है। देखो आचार्य खेद व्यक्त करते हुए कहते हैं ऐसा क्यों होता है, तात्पर्य यह है कि यद्यपि ऐसा होना नहीं चाहिए तथापि ऐसा होता है, यह तथ्य है। ये पांडे राजमल जी का है, पांडे राजमल जी का तो जानते हो ना, कृष्टी का जिन्होंने लिखी है। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव ऐसी आशंका करेगा कि जीव द्रव्य ज्ञायक है और समस्त गये को जानता है, इसलिए परद्रव्य को जानते हुए कुछ थोड़ा बहुत रागादि अशुद्ध परिणति का विकार होता होगा। माने हम जानेंगे तो थोड़ा बहुत राग द्वेष हो जाएगा, ऐसी कल्पना करके मुफ्त में ही। बहुत से लोग कहते हैं उधर देखो ही नहीं, उधर देखो ही नहीं, क्योंकि वो ऐसा मानता है वो देखने से वो जानने में आने से राग होता है। समस्या ये नहीं है कि तुम्हें देखो कि नहीं देखो, नहीं देखो कोई दिक्कत नहीं, देखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तू नहीं देखो कर रहा है, तू ये मानता है कि वो देखने से राग होता है ना। उत्तर इस प्रकार है कि परद्रव्य को जानते हुए तो निरंश मात्र भी विकार नहीं है, देखो है ना, अपनी विभाव परिणति करने से विकार है, अपनी शुद्ध परिणति होने पर निर्विकार है। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार दीपक प्रकाश स्वरूप है, घटपट आदि अनेक वस्तुओं को प्रकाशता है, प्रकाशते हुए जो अपना प्रकाश मात्र स्वरूप था वो वैसा ही है, विकार तो कुछ देखा नहीं जाता। यानी इसलिए पर पदार्थ जानने में आ गए ये भी कोई अपराध नहीं है, और जानने में नहीं आए ये भी कोई अपराध नहीं है। ये जो पांडे राजमल जी ने लिखा है इतना जो हिस्सा अपन अधूरी पड़ा है, वो बनारसी दास जी ने उसे दोहों में बांधा है। पढ़ो दोहे अच्छे, चलो।
जो रजिन नी समय चहु दिश करे ओ दो पगटे घटपट रूप में घटपट रूप न हो, जो सुज्ञान जाने सकल गेय वस्तु को मन गेया किति परिणवे पे तजे नातम दर ज्ञान दम अविचल सदा गह विकार ना को राग विरोध विमोह मैं कबहुं भूल ना होय। ऐसी महिमा ज्ञान की नीचे है घटमान मूरख में त्या दृष्टि सो सहज विलोकना पर स्वभाव में मगन है ठाने राग विरोध धरे परिग्रह धारिना करे ना तम सोल।
जैसे दीपक रात्रि के समय में चारों तरफ उजेला करता है, जो जो भी पदार्थ उसके उजेले में आते हैं वे प्रकाशित हो जाते हैं, है ना। प्रगटे घट घट रूप में घट घट रूप न हो, भले ही उसके प्रकाश में सारे घड़े घटपट जो भी पदार्थ हैं वे सब प्रकाशित हो जाते हैं, लेकिन वो दीपक घड़े रूप नहीं होता, कपड़े रूप नहीं होता, घटपट रूप नहीं होता। उसी प्रकार जो सुज्ञान जाने सकल गे वस्तु को मर्म, ज्ञानी जीव संपूर्ण देह वस्तुओं के मर्म को सहज भाव से जान लेते हैं और गेया कृति परिणमय पे तजेन आत्म धर्म, वो गेया का रूप परिणमित भी होता है गेया का रूप, लेकिन वो उससे उसका ज्ञान पना कुछ नष्ट नहीं हुआ। जैसे कि सोना है ना, मंडली के रूप में था, बिस्कुट के रूप में रहता, अरे कोई गहने के रूप में था, अब उसको फिर दूसरा गहना बना दिया तो उस सेठ के माथे पे सुनार के माथे पे जरा भी सल आता है, क्योंकि वो जानता है कि सोने को कुछ नहीं हुआ है, उसका आकार बदलने से सोने को कुछ तकलीफ नहीं हुई है, मतलब सोना तो पूरा सोना है। ऐसे ही गेय आकार परिणमित होने से ज्ञान में कुछ भी कमी ज्यादा नहीं आया है, कुछ ज्ञान का नुकसान नहीं हुआ। क्या ज्ञान धाम अभिचल सदा गह विकार ना कोई, ज्ञान धाम तो अभिचल रहता है, वो तो उसमें कोई विकार नहीं होता है। राग विरोध विमोह में कभू भूल ना होए, भूल करके भी राग दोष विरोध में नहीं होता है वो। ऐसी महिमा ज्ञान की है, निश्चय है घट माई और मूर्ख मिथ्या दृष्टि सो सहज बिलोके नाई, पर स्वभाव में मगन हुए थाने राग विरोध और धरे परिग्रह धारणा करे न आत्म सूझ। आत्मा की पहचान तो करता नहीं, आत्मा का रिसर्च तो करता नहीं और बस पर पदार्थों को ग्रहण करता है। वो क्या मान लेता है कि मैंने इसे जाना, इसका आकार मेरे ज्ञान में बना तो मैंने इसे ग्रहण कर लिया, अब ग्रहण कर लिया तो परिग्रह हो गया, मतलब वो होता नहीं उसका। देखो अपने रेल में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, तब वो चार घंटा के लिए वो सीट आपको रिजर्व हो गई, आपने अपनी सीट मान ली, मैं खत्म सीट मान ली अपनी, और आप उसकी जरा सी भी अनुकूलता प्रतिकूलता में सुखी दुखी होते हैं। अब आपके ज्ञान में ये रहे कि मुझे चार घंटा यहां बैठना है और मुझे रिजर्व है मेरी सीट, कोई चिंता की बात नहीं है, और यदि ये सीट में आग भी लग गई ना, टूट गई कट गई, तो अभी कुछ नहीं है, मुझे बगल की सीट बैठने को मिलेगी। आपकी ऐसी निश्चिंता है ना, जहां तक मेरा रिजर्वेशन है वहां तक कोई मुझे गाड़ी में से उतारने वाला नहीं है, बल्कि जो भी अधिकारी टीटी मीटी आएगा, पुलिस वाले आएंगे, मेरी बैठने की व्यवस्था करेंगे। उसे काहे को पुलिस वाले से डर, काहे को टीटीआई से डर, किसी से डर, अब मेरी सीट तो नष्ट हो गई और मैं यहां डब्बे में हूं, लेकिन तेरा रिजर्वेशन था ना उतने काल तक, तो क्या करना। और उसके बाद तो सीट बिल्कुल कायम रहे तो भी तू वहां एक मिनट खड़ा नहीं रह सकता है? तेरे ज्ञान को गेयों में जो भी विकृति होती है उस विकृति से मेरे ज्ञान को आकुलित होने की क्या जरूरत है? वो ज्ञान को जो भी हो रहा सहज भाव से है, वो ज्ञान को उसमें होने की आकुलित होने की दंतमात्र भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकरण से मैं कभी बनारसी दास जी को इतना प्रभावित किया कि वे नाटक समय सार में यहां सुमति को राधिका और कुमति को कुब्जा कहकर अनेक छंद लिखते हैं जो मूलतः पठनीय है। ये तो कवि हृदय थे ना, और उसको साहित्य चलता था बहुत ज्यादा, जो आगरा में वो जाते थे व्यापार के लिए, बहुत दिनों तक आगरा रहे बनारसी दास जी, और आगरा उस वक्त देश की राजधानी थी, दिल्ली नहीं थी, आगरा थी, सीकरी, सीकरी है ना आगरा के पास, वहां सब राजमहल थे, सब जिला मुगल राजा लोग रहते थे। वो सूरदास ने लिखा कि संतन कहा सीकरी सो काम ले, कि संतों का सीकरी से क्या लेना देना। अब अपन बोलते सीकरी क्या है, सीकरी क्या है, बताओ सूरदास में सीकरी क्या है। अब आज कोई कहे हमें दिल्ली से क्या लेना देना, दिल्ली क्या है, दिल्ली क्या है, कुछ नहीं, आज सब जानते हैं दिल्ली माने क्या है। उस वक्त देश की राजधानी थी, सबसे बड़े सम्राट थे मुगल लोग देश के, और वो राजधानी थे, हम सीकरी से हमें क्या लेना देना।
तो वे उधर रहते थे बनारसी दास जी, और वहां बहुत कवि राज दरबारों में आया करते थे। फिर सब मतलब कवियों का भी ठाट बाट, जहां राजा होते थे राज दरबारों में कवि होते थे, तो सब वहां पर इकट्ठे, जैसे जे लोग गुणीजन बोलते थे, वे गुणीजन इकट्ठे हो जाया करते थे, है ना। अब कुछ राजाश्रय के कवि होते थे, कुछ संत टाइप के कवि होते थे जिन्हें राजाश्रय से कुछ लेना देना नहीं है। तो वो वैष्णव धर्म की मुख्यता थी ना, तो वहां राधा कुब्जा ये नारियां ने, कुब्जा जब कुब्जा माने वो कुबड़ी एक नारी थी ना, क्या नाम उसको, वो जो रामचंद्र जी के रामायण में आती है ना, हुई है कहा रानी को हो नृपति हमें क्या हानि, दासी छोड़ हुई है का रानी। वो बोलती थी कुबड़ी थी, केकई की दासी, केकई की एक दासी है मंथरा, समझ गए ना, कुबड़ी थी वो। तो वो कहते हैं कि उसको कुब्जा माने वो हमेशा ऐसा भिड़ाने का काम करती थी, तो उन्होंने कुबुद्धि को कुब्जा और सुबुद्धि को राधा ऐसा रूपक बना के, और बहुत छंद लिखे हैं बनारसी दास जी ने, तो वहां देखना चाहिए वो। यहां पर वास्तव में तो उन्होंने लिखे होंगे अपने अलग से, पहले भी कह चुका हूं कि बनारसी दास ने नाटक समय सार कोई पहली छंद से लेकर अंतिम छंद तक एक साथ बैठ के लिखा हो, किरण से ऐसा नहीं है। वो तो पढ़ते थे तो कलस्ती का, और जब उनका मन जहां रम जाता था तो उस प्रकरण के संबंधी उससे आधार पर उसके गद्य को पद्य में बदल देते थे, और सब लोग उनके जो साथी थे याद कर लेते थे, वो गाते थे खूब आराम से वो। फिर जब उनका स्वर्गवास हो गया तब उनके शिष्यों ने और उन्होंने इकट्ठे कर करके वे छंद और उसको व्यवस्थित किया, तो अमृतचंद के छंदों से मिला मिलान करके कि जेस से मिलता है जेस से मिलता है, तो सैकड़ों छंद उसमें ऐसे हैं जिसके लिए कोई अमृतचंद का छंद नहीं है, और एक बहुत से छंद ऐसे हैं कि अमृतचंद के छंद हैं और उसके बदले में बनारसी दास का कोई छंद नहीं है। ये बात बताता है कि उन्होंने ऐसा कोई अनुवाद नहीं किया, फिर पूरी तरह बंधे नहीं, ऐसा नहीं कि सामने ऊपर रख करके छंद का श्लोक का फिर देख के नीचे अनुवाद करते होंगे, वो तो उनके जो अंदर घुल गई तो बस उसे देख करके लिख देते थे। तो उन्होंने भी छंद मिल गए होंगे उन लोगों को, अब ये समस्या कि कहां डालें, इन्हें कहीं नहीं लगा सकते थे वो, लेकिन उनने ये प्रकरण में जहां सुमति दुर्बुद्धि की बात आई ख्याल में आई ना, वहां उस प्रकरण में उन्होंने वो छंद लिख दिए, इकट्ठे कर दिए, और इतनी सी बात है। अब उनको हम यहां दें तो फिर वही झंझट खड़ी होती है, कौन से आचार्य के कौन से छंद का ही अर्थ है। ये तो जो जब पहले हमने छापा यहां पर जयपुर पंडित से नाटक समय सार, तो उन छंदों को ऐसा ढूंढ ढूंढ के नीचे लिखा, उनका तो ऐसा नाटक समय सार था, लेकिन एक कौन से छंद का अनुवाद होगा, ऐसा मिलान कर करके और नीचे संस्कृत के वो छंद लिख दिए, नहीं तो पहले उन किताब में वो छंद ही नहीं लिखे रहते थे, बस खत्म, बस इनका ये नाटक समय सार है वैसे आप पढ़ लो। चलो हो गया समय तो, अब 223वां कलश कल पढ़ेंगे।